आज है 19 नवंबर दिन मंगलवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। दिल्ली में जेएनयू के छात्र छात्रावास शुल्क के विरोध में डटे, पुलिस पर लगाया जाति का आरोप।
मैं इस जेएनयू में अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकती, मेरे जैसे तमाम स्टूडेंट है जो जेएनयू में डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते।
स्टूडेंट को लाइट बंद करके मारा जाता है, जो पुलिस है ये किसका जो है सर्विस कर रही है।
राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, सुनवाएंगे आपको। बीएचयू में संस्कृत अध्यापन के लिए विरोध का सामना कर रहे प्राध्यापक फिरोज खान से बातचीत।
भाषा विभिन्ना सुफलाश्च धर्मा नाना कला यत्र समुल्लसन्ति।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। अब से कुछ देर पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक फीस में हुई बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती तब तक वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस बीच जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने इस मामले में छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ मंगलवार सुबह डॉक्टरों की टीम के साथ लाहौर से एयर एम्बुलेंस में रवाना हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी विदेश यात्रा पर लगी रोक हटा दी थी, जिसके बाद सरकार ने सोमवार को उन्हें ब्रिटेन जाने की इजाज़त दी। चीन ने कहा कि हांगकांग की अदालतों को संवैधानिक मामलों पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। चीन की ओर से ये ऐलान हांगकांग के हाईकोर्ट की ओर से सोमवार को सुनाए गए एक फैसले के बाद किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों के मास्क पहनने पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है। इस बीच बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंचुआंग ने कहा कि एक देश दो प्रणालियों के सिद्धांत को चीन नहीं बल्कि प्रदर्शनकारी चुनौती दे रहे
हैं।
उन्होंने हांगकांग की स्थिरता और समृद्धि को नुकसान पहुंचाया है और एक राष्ट्र दो प्रणालियों के सिद्धांत को के आधार को भी चुनौती दी है। चीन की केंद्रीय सरकार चीफ एग्जीक्यूटिव का समर्थन जारी रखेगी ताकि वो कानून के हिसाब से शासन चलाती रहें। हम हांगकांग पुलिस और न्यायिक अंगों का भी समर्थन करेंगे ताकि वे हिंसक अपराधियों को सजा दें। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंगशुआंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसे ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि ईरान में तेल की कीमतें अचानक बढ़ने को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से घातक हथियारों का इस्तेमाल करने को लेकर चिंता जताई। इन प्रदर्शनों को लेकर जानकारियां रोकने के लिए ईरान में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात अमरीकी सैनिकों का खर्च उठाने को लेकर अमरीका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रही चर्चा अचानक बंद हो गई है। ऐसी खबरें आईं कि अमरीका ने दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए वहां पर तैनात अपने सैनिकों के एवज में भारी रकम की मांग की थी। फिलीपींस दौरे पर गए अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने इस मामले में कहा, विदेश मंत्रालय चर्चा का नेतृत्व कर रहा है। मैं जानता हूं कि सक्षम लोग इसमें लगे हैं और हम अपने दक्षिण कोरियाई सहयोगियों के साथ मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दक्षिण कोरिया संपन्न देश है, वे और भी योगदान दे सकते हैं। बाकी मैं इस मामले को विदेश मंत्रालय पर छोड़ना ठीक समझता हूँ। ये थे अमरीका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के शब्द। तालिबान ने 2016 से बंधक बनाकर रखे 2 विदेशी नागरिकों को रिहा कर दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी .com पर भी। संदीप सोनी के साथ। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में छात्रावास शुल्क बढ़ाने के विरोध में छात्र कल भले ही संसद तक मार्च नहीं निकाल सके, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो शुल्क बढ़ाने का फैसला वापस लिए जाने तक पीछे नहीं हटेंगे। जेएनयू में धरने पर बैठे छात्र संगठन के पदाधिकारियों और अन्य छात्रों ने आज मीडिया को संबोधित किया। वहां मौजूद थे बीबीसी संवाददाता प्रशांत चहल, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
जेएनयू में आज माहौल बहुत गर्म था, बल्कि ये कहना सही होगा कि अभी भी गर्माया हुआ है। कल जेएनयू के छात्रों ने संसद तक मार्च निकालने की जो कोशिश की थी उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। छात्रों ने आज दावा किया कि पुलिस ने कल उनके साथ बर्बर सलूक किया। सबसे पहले सुनिए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष एशी घोष को।
पुलिस के उनके इंस्पेक्टर्स बोल रहे थे कि मुझे जाने दिया जाए सामने कि हम लोग बात कर पाए। वहाँ पे मेरा कुर्ता को पूरा एकदम खोल के ऊपर उठा दिया गया। एंड इट वाज रियली शेमफुल दैट द पुलिस इज बिहेविंग इन दिस मैनर। और उसके साथ वहाँ पे जो विमेन स्टूडेंट्स थे उनको मेल पुलिसमैन इंक्लूडिंग मी आई वॉज मैन हैंडल्ड बाई द मेल पुलिस पीपल चार। और इससे भी बदतर सिर्फ उनके साथ खींचातानी नहीं हुई है, उनको लिटरली ग्रोप किया गया है।
ये थी जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष एशी घोष। एक अन्य छात्र ने भी अपनी व्यथा कुछ इसी तरह सुनाई।
मिनिस्ट्री ले जाएंगे बोल के यूनियन को साइड कर दिया जाता है और तभी स्टूडेंट को लाइट बंद करके मारा जाता है और जितने भी स्टूडेंट पूरा बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। कुछ इस प्रकार का जो ब्रूटालिटी है, ये पुलिस किसका सर्विस कर रही है, जनता का सर्विस।
लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है, जबकि छात्रों का दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान दृष्टिबाधित छात्रों को भी नहीं बख्शा। सुनिए ऐसे ही एक छात्र ने क्या दावा किया।
एक दलित आदमी जो अपने घर में ठीक से रोटी कमा खा पाता है वो नहीं, वो आके यहाँ पढ़ रहा है और वो वायलेंट प्रोटेस्ट करेगा। अरे जिसके पास लाठी है, जिसके पास गोली है, वो प्रोटेस्ट करेगा वायलेंट, या वो मारपीट करेगा कि स्टूडेंट मारपीट करेगा वहाँ पे। मैं एक दृष्टिबाधित स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ से जब आगे की तरफ गया तो एक पुलिस वाले ने मुझे वहीं जमीन पर उठाकर पटक दिया। और मैंने उससे तब भी कहा कि तुम एक दृष्टिबाधित को ऐसे नहीं मार सकते हो, तुम्हारे अधिकार के खिलाफ है ये। उसने कहा कि जब ब्लाइंड है, जब अंधा है तो प्रोटेस्ट में क्यों आया। और ये इन लोगों ने कम से कम 5-6 लोग मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ के मारा मुझे ऊपर से।
वहीं इस मामले में जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि छात्रावास शुल्क पहले की तरह नहीं रखा गया तो उनके लिए जेएनयू में पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा।
हमारा वीसी आके हमसे बात करता नहीं, हमसे कभी मिलता नहीं। जो फीस हाइक हुआ है उसको घटाया जाए, क्योंकि अगर ये फीस हाइक होता है मैं खुद इस जेएनयू में अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकती। मेरे जैसे तमाम स्टूडेंट है जो जेएनयू में डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते।
इस बीच जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने भी छात्रों का खुलकर समर्थन कर दिया है।
हम शुरू से स्टूडेंट के मुद्दे के साथ है कि फीस हाइक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गरीब वंचित विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गया इस देश में, हमारे जैसे लोग जो आज यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं वो शायद बात करने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि एमएचआरडी ने एक बड़ी कमेटी बना दी है। वो ये कह रही कि वाइस चांसलर और स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या बात करने के लिए एमएचआरडी को कमेटी बनानी पड़ेगी? वाइस चांसलर किस लिए? अगर वाइस चांसलर की जरूरत नहीं है, एमएचआरडी को ही बातचीत करनी है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की कोई जरूरत नहीं। रिजर्नेशन ऑफ वाइस चांसलर एक मांग है, रोल बैक ऑफ फी हाइक दूसरी मांग है।
इन सब आरोपों के बीच अब कल का दिन काफी अहम हो गया है, जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हड़ताली छात्रों के प्रतिनिधियों को मिलने के लिए बुलाया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेएनयू में छात्रावास शुल्क पहले की तरह रखा जाएगा या प्रशासन अपने फैसले पर अड़िग रहेगा। यदि ऐसा हुआ तो इस मामले की गूंज अभी कई दिनों तक सुनाई देगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे प्रशांत चहल। हमने इस सिलसिले में जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। राजस्थान में बीते दिनों संपन्न हुए नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम आज मतगणना पूरी होने के साथ ही घोषित कर दिए गए हैं। इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिद्वंद्वी बीजेपी से काफी आगे निकल गई है। कांग्रेस ने जहां इसे अपनी नीतियों की जीत बताया है, वहीं बीजेपी ने इसमें सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
ये राज्य में 49 शहर कस्बों की सरकार के लिए चुनाव था। इन चुनाव में 2000 से ज्यादा वार्डों के नतीजों का ऐलान किया गया तो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी बढ़त लेती हुई दिखी। कांग्रेस ने 961 तो बीजेपी ने 737 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है, लेकिन 300 से ज्यादा स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी जीत का परचम लहराया है। इन चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को 8.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, वहीं बीजेपी को 7.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले हैं। इन चुनाव नतीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नतीजों से जोड़कर देखा और कहा अब जनता बीजेपी को पहचान गई है। मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और कहा मतदाता बहुत समझदार है।
बहुत प्रसन्नता की बात है कि जनता ने मैंडेट दिया है सोच करके कि सरकार जिस रूप में परफॉर्म कर रही है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो समस्याएं शहर की भी है उनको प्रायोरिटी हल करें और जनता ने विश्वास प्रकट किया है उनकी अपेक्षा तो आशा के अनुरूप काम करे सरकार। जनता बहुत समझदार है, वो तमाम फैक्टर साथ रखती है, देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या संदेश देना है केंद्र को भी राज्य को भी। तो रिवर्स कॉमन सेंस जनता का, अकल होशियारी में जनता बहुत समझदार है, इसलिए वो नाप तोल करके वोट देती है। जैसे महाराष्ट्र में हरियाणा में दिया वैसे ही ये राजस्थान में दे रही है।
इन चुनाव परिणामों से बीजेपी को थोड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज कहते हैं कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया है।
सरकार के इतने दुरुपयोग के बावजूद भी हमको प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया, उसके लिए हम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और जहां कहीं हम नहीं जीते, जहां पर हम विपक्ष में हैं, वहां भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के बोर्ड के खिलाफ जनता की आवाज बनकर सड़क पर उनकी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मंथन तो हार और जीत दोनों में होता है, अगर हम जीतते तो भी पूरी तरीके से मंथन करते और अगर कहीं हारेंगे तो उसका भी मंथन करेंगे। मंथन तो हमारी प्रक्रिया का हिस्सा, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और जहां कहीं भी हमारी कमी रही होगी हम उसको सही भी करेंगे। और मैंने जैसा आपको पहले कहा, जहां हम चुनाव हारे वहां विपक्ष के रूप में जनता आवाज बनकर सरकार से लड़ाई भी लड़ेंगे।
राज्य में मतदान के बाद से प्रमुख दलों ने संभावित विजयी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर ली थी। ये बाड़ेबंदी इन संस्थाओं में अध्यक्ष और दूसरे पदों के चुनाव तक जारी रहेगी। सूबे के होटल रिजॉर्ट और फार्म हाउस निर्वाचित नेताओं की बाड़ेबंदी से आबाद और गुलगुलजार है, क्योंकि जहां किसी को भी बहुमत नहीं मिला वहां निर्दलीय प्रत्याशी ही शहरी संस्थाओं में जीत की इबारत लिखेंगे। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस सरकार में पार्टी के अंदर की कथित गुटबाजी सामने आ रही है। पार्टी ने कमलनाथ के जन्मदिन पर एक विज्ञापन दिया जिसमें उस विज्ञापन की भाषा कुछ ऐसी थी कि वो तारीफ कम ही लग रही थी, लेकिन आज पार्टी ने संशोधित विज्ञापन जारी करके विवादित विज्ञापन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने की बात कही है। भोपाल से शूर न्याजी की रिपोर्ट।
सोमवार यानी कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसी दिन भोपाल के तमाम अखबारों में एक एक पेज का विज्ञापन जारी किया। उस विज्ञापन में लिखा था कि वह बातें जो बनाती हैं कमलनाथ को बेहद खास, उन खास बातों में एक बात है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ को 1996 में हार का सामना करना पड़ा था जिसमें सुंदरलाल पटवा ने उन्हें पटखनी दी थी। इसके साथ ही उसमें लिखा है कि आपातकाल के बाद संजय गांधी को एक मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, उनकी सुरक्षा को लेकर इंदिरा गांधी चिंतित थीं, तो कमलनाथ जानबूझकर एक जज से लड़ पड़े और जेल गए और संजय गांधी के साथ रहे। वहीं इसमें उनकी खास बातों में यह भी लिखा है कि 1993 में उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम आगे कर दिया और वह मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, लेकिन अब 25 साल बाद उन्हें दिग्विजय सिंह के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। कांग्रेस इसे भाजपा की साजिश बता रही है। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया कहते हैं,
मनगढ़ंत बातें हैं, विघ्न संतोषी लोग कुछ न कुछ ऐसी बातें छोड़ देते हैं। कमलनाथ जी एक स्थापित नेता, दिल्ली में भी एक सत्र उन्होंने काम किया है, वहाँ पे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है और हाईकमान के विश्वास में रह के काम करते रहे, ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब जो मुख्यमंत्री माने कमलनाथ जी जो जो जवाबदारी हाईकमान ने दी उन्होंने बेखूबी निभाई है और अभी मध्य प्रदेश में निभा रहे हैं, और कम समय में जो काम करके दिखाया शिवराज ने 15 साल में भी नहीं कर किया, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है।
वहीं भाजपा इसे कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी बता रही है। भाजपा उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कमलनाथ की सारी बातें जनता के सामने आ गई हैं। अगर किसी और ने विज्ञापन जारी किया है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा मॉडल इस विज्ञापन में सामने आ गया है, ये कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते, ये कांग्रेस कमेटी का विज्ञापन खुद बता रहा है। ये मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है, ये मजबूर मुख्यमंत्री है। और कमलनाथ जी जो है ये दिग्विजय सिंह के हाथों की कठपुतली और खिलौना बनकर काम कर रहे हैं। किसी के हाथ की कठपुतली खेलने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, नहीं चाहिए। और इसलिए मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि जो विज्ञापन है वो कांग्रेस की मध्य प्रदेश कमेटी ने जारी किया है, नहीं तो मध्य प्रदेश कमेटी के चेयरमैन कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी ने जारी कराया है। किसने किया उनके खिलाफ FIR करो, जांच करो, पर जो कुछ भी था वो अब जनता के सामने कमलनाथ जी का आ गया।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे गुटबाजी का नहीं बल्कि लापरवाही का मामला मान रहे हैं। दिनेश गुप्ता कहते हैं कि यह बताता है कि कांग्रेस कमेटी में बैठे लोगों ने इसे गंभीरता से ही नहीं लिया।
ये जो है टोटली एक लापरवाही का मामला है। और किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस के नेता सत्ता आने के बाद जो है बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, अपने नेता का भी ठीक से जो है अभी वो प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के कामकाज को या कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर वो कितने गंभीर हैं।
इस पूरे विज्ञापन कांड के बाद कांग्रेस ने आज संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन में पार्टी ने कमलनाथ की तारीफ की है, लेकिन यह बात बताती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
अभी कुछ दिन पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के जानकार डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति पर अच्छा खासा विवाद हुआ। विरोध करने वाले छात्रों का दावा है कि कोई मुसलमान शिक्षक हिंदू धर्म और कर्मकांडों के विषय में कैसे पढ़ा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय का कहना है कि डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति नियमों और योग्यता के आधार पर हुई है। इस विवाद के संदर्भ में BBC संवाददाता रजनीश कुमार ने फिरोज खान से बात की और सबसे पहले यही जानना चाहा कि संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में उनकी रुचि कब और कैसे जागी।
जब 3-4 साल का मैं था, प्राथमिक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, तब मैं उसमें पढ़ने जाया करता था। वहाँ पर इतना बर्डन था, टीचर्स कहते थे कि ये भी याद करना है, तुझे ये भी याद करके लेके आना है, और मैं वहाँ पर बहुत परेशान हो जाया करता था। घर वालों को बताया था कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, कई बार स्कूल नहीं जाता था मैं। तो पापा ने सोचा इसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में भी उन्होंने सामान्य स्कूल न चयन करके संस्कृत स्कूल को चुना, क्योंकि पापा ने भी संस्कृत पढ़ी, वो भी कॉलेज किए हैं, शास्त्री किए पापा ने भी, और उन्होंने मुझे वहाँ पर एडमिशन दिलवा दिया। तो इस प्रकार से जो संस्कृत का मेरा जो सफर है वो इसे शुरू हुआ।
संस्कृत को लेकर जो एक आम धारणा है कि एक ऐसी भाषा है जिसमें धर्म की पढ़ाई ज्यादा होती है, हिंदू धर्म से इसको जोड़कर देखा जाता है, तो आपने जब ये फैसला किया, किसी ने कहा नहीं कि संस्कृत की पढ़ाई क्यों कर रहे हो?
नहीं, ऐसा किसी ने कोई ना आक्षेप किया है, ना कभी किसी ने ये कहा कि तुम संस्कृत क्यों पढ़ रहा है, संस्कृत तो नहीं पढ़नी चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि संस्कृत जो है एक विशेष धर्म से संबंध रखती है। प्रियम भारतम में ऐसे करके मैंने कविता भी संस्कृत कविता लिखी थी। भाषा विभिन्ना सुफलाश्च धर्माः, भाषा विभिन्ना सुफलाश्च धर्माः, नाना कला यत्र समुल्लसन्ति, नाना कला यत्र समुल्लसन्ति, कामाः मदीयाः सफलाश्च येना, कामाः मदीयाः सफलाश्च येना, तदेव रम्यं प्रियभारतम्, तदेव रम्यं प्रियभारतम्।
आपने संस्कृत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ा होगा, महाभारत की कहानियां भी पढ़ी होंगी, आप इसको लेकर क्या सोचते थे कि क्या ये धार्मिक शिक्षा है या कि भाषा की शिक्षा है?
संस्कृत है वो प्राचीन भाषा है, भाषा ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म से संबंधित होती है, कोई भी धर्म से संबंधित व्यक्ति किसी भी भाषा को जान सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, ऐसा कुछ उसमें है। एक पंक्ति है उसका है, मनुष्य जो है मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करे, ऋग्वेद की है, वो बता दें, पुमान पुमानसम परिपातु विश्वतः, एतादृशी संस्कृत भाषायाः परंपरा वर्तते यत् मनुष्यः मनुष्यस्य सर्वतः सर्वप्रकारेण रक्षां कुर्यात्, एतादृशी भावना तत्र संस्कृते विद्यमाना वर्तते। अतः अस्माभिः संस्कृतभाषा अवश्यमेव पठनीया, पाठनीया, अध्यापनीया एव।
अक्सर लोग भाषा को धर्म से जोड़ देते हैं, उर्दू को मुसलमान से जोड़ देते हैं और संस्कृत को हिंदू से जोड़ देते हैं, तो इस चीज को आप कैसे तोड़ते हैं?
संस्कृत भाषा के लिए यही कहना चाहूँगा कि एक संस्कृत हो या कोई उर्दू हो या अन्य कोई भाषा हो, वो किसी एक विशेष अंश से, जाति से, समाज से या धर्म से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, उसको जो है सभी को पढ़ना चाहिए। जैसे अगर कोई अन्य धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, तो उसको भी जो है संस्कृत पढ़नी चाहिए।
ये थे BHU में संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर फिरोज कुमार। पाकिस्तान के एक खास इलाके में HIV एड्स के मामले तेजी से सामने आने के बाद आम लोगों के साथ साथ सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के भी कान खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लगभग 1000 लोग HIV पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें बच्चों की संख्या लगभग 900 है। मामला यूं तो कुछ दिन पुराना हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में चिंता कम नहीं हुई है। BBC संवाददाता शुमैला जाफरी की खास रिपोर्ट।
डॉक्टर मुजफ्फर घांगरू एक बच्चे का चेकअप कर रहे हैं। बच्चा अपने बाप की गोद में बैठा है। उसकी आंखें और गला देखने के बाद डॉक्टर ने हाथ साफ किए, फिर बच्चे की कमीज उठाई और उसके सीने पर स्टेथोस्कोप रख दिया। सुबह सिंध के इलाके रतोडेरो से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक सरकारी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर घांगरू के कमरे के बाहर तकरीबन एक दर्जन बीमार बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर घांगरू इस इलाके में बच्चों के बेहतरीन डॉक्टर माने जाते थे, लेकिन इस साल अप्रैल में जिला लाड़काना के इलाके रतोडेरो में बच्चों में HIV फैलने के बाद उन पर जानबूझकर ये बीमारी फैलाने का इल्ज़ाम लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब इंक्वायरी मुकम्मल हुई तो उन पर से ये इल्ज़ाम हटा लिया गया और डॉक्टर घांगरू पर क्रिमिनल नेगलिजेंस यानी मुजरमाना गफलत का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जमानत पर रिहाई दे दी गई।
अब ये 3 महीने के बाद मैं जहाँ से रिलीज हो गया हूँ, किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि डॉक्टर मुजफ्फर इनवाल है, ये कहाँ गए? मैं तो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा हूँ 3 मंथ से, जब से जमानत से हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा हूँ, वही पेशेंट देख रहा हूँ, वही देखकर किसने एक बताओ किराए की हो।
रतोडेरो में बाजार में एक गली की नुक्कड़ पर डॉक्टर मुजफ्फर घांगरू का अपना क्लिनिक अभी भी सील है। इस क्लिनिक पर वो एक दिन में दर्जनों बच्चों का इलाज करते थे। कम फीस और जल्दी आराम मिलने की वजह से यहाँ पर हमेशा ही बीमार बच्चों की भीड़ रहती थी, लेकिन डॉक्टर घांगरू कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि उनका क्लिनिक जल्द ही खुल जाएगा।
सरकारी वकील खुद कह रहा था भाई ये केस तो खत्म होने वाला है, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन मीडिया तक बात आ गया, इसको केस को चलाना है कोर्ट के थ्रू खत्म हो जाए।
ये सारा मामला इस बरस मई में सामने आया, जब रतोडेरो में एक और डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर आने वाले ऐसे बच्चों के HIV टेस्ट करवाए जिन्हें कई हफ्ते दवाई देने के बाद आराम नहीं आ रहा था। बहुत से बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। इस टेस्टिंग ने हुकूमत और HIV के लिए काम करने वाले इदारों को परेशान कर दिया। फिर इलाके में स्क्रीनिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अक्टूबर के पहले हफ्ते तक 1100 लोगों में HIV का वायरस पाया गया, जिनमें से 800 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर घांगरू के क्लिनिक से कुछ किलोमीटर के फासले पर गांव सुभाना खान में 32 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। इन बच्चों में से किसी के माँ बाप को ये बीमारी नहीं। एक माँ ने BBC को बताया,
मैंने पूछा माँ तो मेरी बेटी का वजन करो, उसके ताकत की दवा लो, तो वो लोग बोलते हैं बस आप हम लिख देते हैं, आप बाहर से ले लें। ताकत की दवा 100 रुपए की थी, वो भी हमें नहीं मिली, हमने अपने पैसों से ले ली वो भी, तो और क्या मदद करेगी सरकार हमारी।
गांव में एक डेरे पर 3 चारपाइयों पर HIV पॉजिटिव बच्चे अपनी माओ के साथ बैठे हैं। किसी के पाँव में जूती नहीं तो किसी के तन पे पूरे कपड़े नहीं। कुछ बच्चे बीमार हैं और मुसलसल रो रहे हैं। माओ के चेहरों से परेशानी झलक रही है। एक माँ दोबारा बोली,
हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, लोग इससे नफरत करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, हाथ नहीं मिलाओ हमारे बीमार हो जाए, हमारे घर नहीं आओ। ये बेटी है मेरी, दूसरे घर के बच्चों के साथ खेलती है, वो लोग अपने बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, नहीं नहीं इस बच्ची के साथ नहीं खेलो, मेरी बेटी मेरे पास रोती चली आती है, हम कहाँ जाएं, वो ये बड़ी हो जाएगी क्या करेगी, ये मर जाएगी इस बीमारी के बारे में सुनकर, कौन इसको क्या कोई अपनाएगा इसे।
HIV फैलने के बाद से फातिमा मीर वो पहली डॉक्टर थी जो रतोडेरो पहुंची और वहाँ बच्चों का इलाज करने और दूसरे डॉक्टरों की ट्रेनिंग का काम संभाला।
1000 एक्टिवली रजिस्टर्ड पूरे पाकिस्तान में थे। मार्च से लेकर अभी अक्टूबर तक 800 बच्चा सिर्फ लाड़काना में है।
इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक रतोडेरो में HIV इंजेक्शन की सिरिंजों के बार बार इस्तेमाल की वजह से फैला,
क्योंकि कल्चर ही हम लोगों का ये है कि बच्चों को जो भी मसला होता है हम कहते हैं इंजेक्शन लगाओ, तो ये थोड़ी सी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उससे बच्चों को हम बार बार रिस्क में डालते हैं।
मेडिकल वेस्ट को ठीक तरीके से ठिकाने लगाने के निजाम में खराबियों, अनरजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स और जाली डॉक्टरों की प्रैक्टिस की वजह से भी पाकिस्तान तेजी से एड्स फैलने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। पाकिस्तान में यूएन एड्स की कंट्री डायरेक्टर मारिया अलीना बोरोमियो ने बताया,
पाकिस्तान में एचआईवी तेजी से फैल रहा है, बल्कि ये एशिया में तेजी से एचआईवी फैलने वाले मुल्कों में दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, जहां 2010 से 2018 तक एचआईवी इन्फेक्शन में 57% इजाफा हुआ, लेकिन यहां एचआईवी के मरीजों में से सिर्फ 10% को ही इलाज मिल रहा है।
सिंध में महकमा सेहत की वजीर डॉक्टर अजरा पीचियो कहती हैं कि रत्तो डेरों में एचआईवी के फैलाव ने हुकूमत को हिला के रख दिया।
आउटब्रेक की वजह से हमने रियलाइज किया कि ये इंजेक्टेबल एंड रीयूज ऑफ इंजेक्शन से हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेजर हमारा जो पेशेंट के लिए यूज होता है वो ऑटोलॉक सिरिंजेस हो।
पाकिस्तान में एड्स पर काबू पाने में सबसे बड़ी रुकावट इस बीमारी से जुड़ी शर्मिंदगी है, लेकिन अब ख्याल ये है कि लाड़काना में छोटे बच्चों में इसके फैलने के बाद एचआईवी से जुड़ी शर्मिंदगी को खत्म करने और इस बीमारी का शिकार लोगों के इलाज में मदद मिलेगी। शुमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज, रतो डेरो, सिंध, पाकिस्तान।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। आज सबसे पहले बात फुटबॉल की करते हैं। फीफा विश्व कप 2022 क्वालिफायर में सुनील छेत्री की नेतृत्व वाली भारतीय टीम अपना अगला मैच अपने से ज्यादा रैंकिंग वाली ओमान के खिलाफ मंगलवार यानी आज खेलेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 8:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले भी एक मैच खेल चुकी हैं, जिसमें ओमान ने भारत को 2-1 से हराया था। ग्रुप ए के दूसरे राउंड में इस मैच में भारत की कोशिश ओमान से पुरानी हार का बदला लेने के साथ ही क्वालिफायर में अपनी पहली जीत हासिल करने की भी होगी, यानी करो या मरो की स्थिति रहेगी भारतीय फुटबॉल टीम के लिए।
ओमान की टीम फिजिकली टफ है और हमारे पास इंटेलिजेंट खिलाड़ी बहुत हैं। हमें इंटेलिजेंसी से खेलना चाहिए और प्लान करना चाहिए ओमान की जो वीडियो वगैरह देख के, क्योंकि ये हमारे लिए करो या मरो, आपने खुद कहा। तो एक एक प्लेयर्स को हम रिसर्च करके फिर हम उसके हिसाब से काम करें और ऑल आउट जाएं, नो पैक फुट। हमने खेलना ऐसे कि गति के साथ कि उनको हमने जमने ही नहीं देना।
ये आवाज थी फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद की। अभी तक क्वालिफायर में भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। ओमान के खिलाफ हारने के बाद उसने एशियाई चैंपियन कतर को गोल रहित ड्रॉ पर रोका था, लेकिन इसके बाद उसने बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ड्रॉ खेला था। और अब बात टेनिस की करते हैं। अनुभवी भारतीय पुरुष युगल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने कंधे की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले डेविस कप मुकाबले के लिए भारतीय टीम से अपना नाम वापस ले लिया है। बोपन्ना की टीम से बाहर होने के बाद जीवन नेडुशेजियान को टीम में जगह मिल सकती है। 8 सदस्यीय टीम में बाएं हाथ के जीवन को 3 रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया था। 39 साल के रोहन बोपन्ना की पाकिस्तान के खिलाफ 29 और 30 नवंबर को खेले जाने वाले मुकाबले के लिए दिग्गज लिएंडर पेस के साथ जोड़ी बनाए जाने की संभावना थी। बोपन्ना देश के शीर्ष युगल खिलाड़ी हैं। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। भारत की राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया गया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। चीन ने कहा है कि हांगकांग की अदालतों को संवैधानिक मामलों पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसे ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि ईरान में तेल की कीमतें अचानक बढ़ने को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात अमरीकी सैनिकों का खर्च जुटाने को लेकर अमरीका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रही चर्चा अचानक बंद हो गई है। तालिबान ने 2016 से बंधक बनाकर रखे 2 विदेशी नागरिकों को रिहा कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप, भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।